दिन भर 8 मई दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रों ने पहले आधिकारिक समारोह में भाग लिया। दुनिया के कई नेताओं ने शुभकामना संदेश भेजे।
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron sehr gefreut und ich habe ihm gestern auch bereits telefonisch zu diesem Erfolg gratuliert.
सहारनपुर के शबीरपुर में बात करेंगे वहाँ की दलित और राजपूत महिलाओं से।
मेरे पति को भी ले गए जी, जेठ को भी ले गए। घर में 2:30 बजे के करीब में अंदर कूद गए नीरे सड़े। उन्होंने हमारी मच्छरदानियां उगाड़ उगाड़ का बिल्कुल वे उठा कर उन्हें ले गए। इसी तरह अभी भी नहीं कपड़ों के चलो।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले इमैनुअल मैक्रों ने निर्वाचित राष्ट्रपति के तौर पर आज पहले आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत की। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने की याद में आयोजित समारोह में वो पूर्व सैनिकों से मिले। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी मौजूद थे। चुनाव में मरी लापेन पर जीत हासिल करने वाले मैक्रों नई सरकार के गठन पर काम कर रहे हैं। मैक्रों का मानना है कि उनके सामने भारी चुनौतियां हैं। मैक्रों के मुख्य आर्थिक सलाहकार जां पिजानी फेरे ने बीबीसी से कहा कि उन्हें भरोसा है कि मैक्रों के राजनीतिक दल एन मार्श को अगले महीने होने वाले संसदीय चुनाव में बहुमत मिलेगा। जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो फ्रांस के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों की जीत से काफ़ी खुश हैं। मर्केल ने कहा कि उनकी और मैक्रों की जल्दी ही मुलाकात होगी। मर्केल के मुताबिक जर्मनी फ्रांस की मदद करना चाहता है। बर्लिन में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि जर्मनी में कई लोग मैक्रों की उस अपील को लेकर फिक्रमंद हैं जिसमें उन्होंने ज़्यादा सामूहिक जिम्मेदारी लेने की बात की है। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में जर्मनी के आयकर दाताओं को फ्रांस की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए कहा जा सकता है। सीरिया के सैकड़ों विद्रोही लड़ाके और उनके परिजन दमिश्क के पास के घेरेबंदी वाले इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। उनके बाहर निकलने का रास्ता सरकार के साथ हुए समझौते के तहत तैयार हुआ है। बाहर निकलने वाले लोग विद्रोहियों के अधिकार वाले इदलिब प्रांत की तरफ जा रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद मुआलिम ने पत्रकारों को जानकारी दी। आज बैरजा में समझौता लागू हुआ है। हम कूबन को लेकर काम कर रहे हैं। इसके बाद यारमुख शिविर भी है जहाँ से सशस्त्र लोगों को बाहर निकालने के लिए बातचीत जारी है। ये थे सीरिया के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान की सरकारी सेना और तालिबान के बीच कुंदूज में जोरदार संघर्ष जारी है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने कुंदूज शहर के पूर्व के मुख्य हाईवे पर अधिकार कर लिया है। ये हाईवे ही कुंदूज शहर को उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से जोड़ता है। शहर में माल भेजने के लिए भी यही मुख्य रास्ता है। रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान के लड़ाके अब शहर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में बारिश के बाद बनी बाढ़ की स्थिति को लेकर शहर के मेयर ने आपातकाल लागू कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक शहर ने दशकों से ऐसी बाढ़ का सामना नहीं किया है। आपात सेवाओं के अधिकारियों के मुताबिक क्यूबेक प्रांत में 2000 से ज़्यादा घरों में पानी दाखिल हो गया है। प्रभावित शहरों में से एक रिगात के मेयर हैंस ग्रुनवाल्ड ने पत्रकारों से कहा,
People had to be evacuated and we put them in boats and they're crying like babies.
लोगों को उनके घरों से बाहर निकालना पड़ रहा है। हमने उन्हें नाव में बिठाया है और वो बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुझे इसका दुख है। फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने भविष्य के बारे में कोई फैसला कर सकें। ये थे मेयर हैंस ग्रुनवाल्ड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन की एक कोर्ट का कहना है कि मानवाधिकार मामलों के प्रमुख वकील शी यंग ने माना है कि पश्चिमी देशों के राजनीतिक विचारों और चीन की प्रणाली को खारिज करने वाली बातों से उनकी सोच बदल गई। चांगशा इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट के मुताबिक शी यंग को हांगकांग और दक्षिण कोरिया में प्रशिक्षण दिया गया था। पत्रकार स्वतंत्र तौर पर कोर्ट के दावों की पुष्टि नहीं कर सके हैं। शी यंग को साल 2015 में हिरासत में लिया गया था। उनके साथ कई अन्य वकीलों को भी हिरासत में लिया गया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। रविवार को हुए ऐतिहासिक जीत के बाद फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने पहले आधिकारिक समारोह में भाग लिया है। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के याद में हो रहे समारोह में मैक्रों ने लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिकों का अभिनंदन किया। मैक्रों नेपोलियन के बाद फ्रांस के सबसे युवा नेता होंगे। दुनिया भर के राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ दिनेश उप्रेती।
ड्रम और बिगुल की ये आवाज है पेरिस में उस कार्यक्रम की जिसमें फ्रांस के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने पहले आधिकारिक कार्यक्रम में शिरकत की। ये कार्यक्रम यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की याद में आयोजित किया गया था। मैक्रों ने मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ युद्ध में मारे गए उन सैनिकों को याद किया जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी। मध्यमार्गी और यूरोपीय एकता की वकालत करने वाले मैक्रों 66% से अधिक वोट हासिल कर फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने धुर दक्षिणपंथी नेता मरी लपेन को हराया है। 1958 के बाद फ्रांस के आधुनिक गणतंत्र में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति वहां के दो प्रमुख राजनीतिक दलों सोशलिस्ट और सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी से नहीं है। ये न सिर्फ मैक्रों की जीत है बल्कि यूरोपीय यूनियन के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। मैक्रों की प्रतिद्वंदी लपेन फ्रांस को यूरोपीय यूनियन से निकालने की वकालत कर रही थी, साथ ही यूरोजोन की साझा मुद्रा यूरो से भी फ्रांस को बाहर निकालना उनके चुनावी मुद्दों में शुमार था। जीत के बाद मैक्रों ने पेरिस लूब्र म्यूजियम के सामने इकट्ठा हुए अपने हजारों समर्थकों का आभार जताया और कहा,
Cette confiance, elle m'oblige, et j'en suis désormais le dépositaire.
मुझ पर आपका ये यकीन मुझे आगे बढ़ने में मददगार होगा। मैं अब आपके भरोसे का रक्षक हूँ। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अगले 5 साल तक चुनौतियों से लड़ूंगा और देश को आगे बढ़ाऊंगा। ये थे फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रों के शब्द। मैक्रों ने माना कि इस चुनाव ने एक विभाजित फ्रांस को सामने रखा है। पॉपुलिस्ट मरी लपेन को मिला व्यापक समर्थन इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि वो विचारों के आधार पर बंटे देश को जोड़ेंगे और चरमपंथ और जलवायु परिवर्तन के खतरों का मुकाबला करेंगे। दुनिया भर में मैक्रों के समर्थक अपने नेता की जीत का जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर के राजनेताओं ने भी मैक्रों को उनकी जीत पर बधाई दी है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल कहती हैं,
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron sehr gefreut und ich habe
मैक्रों की जीत से बहुत खुश हूँ। मैक्रों से न केवल फ्रांस के लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं बल्कि जर्मनी और फ्रांस के लोग भी उनकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में यूरोपीय संघ की जोरदार वकालत की है। वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बड़े समर्थक हैं।
ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। अब मैक्रों की अगली परीक्षा 11 और 18 जून को होगी। संसदीय चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने पर राष्ट्रपति आसानी से अपनी योजनाएं लागू कर सकते हैं। वहीं हार के बाद लपेन ने अपने समर्थकों का आह्वान किया है कि वे संसदीय चुनाव के लिए जोर लगाएं।
इमैनुअल मैक्रों ने अपने पहले कार्यक्रम में भाग लिया।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब रुख करते हैं भारत का। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत लेकर वो कल सुबह सीबीआई के दफ्तर जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। उन्होंने कल ही केजरीवाल के खिलाफ 2 करोड़ रुपए अवैध रकम लेने का इल्जाम लगाया था जिसको आम आदमी पार्टी ने आज सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार है। जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई तरह के इल्जाम लगते आए हैं। किसी ने उन्हें तानाशाह कहा तो किसी ने कहा वो दूसरों पर इल्जाम लगाकर हिट एंड रन कर जाते हैं, मतलब इल्जाम लगाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उन्हें किसी ने अब तक भ्रष्ट नहीं कहा था। कल ये भी हो गया जब उन्हीं के एक पुराने सहयोगी और अब तक जल मंत्री रहे कपिल मिश्र ने उन पर अवैध 2 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाया। आज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कपिल मिश्र से 3 सवाल किए। पहला सवाल ये था कि वो सबूत पेश करें कि कहां और कब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते देखा। इसका जवाब अब से थोड़ी देर पहले कपिल मिश्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूं दिया।
संजय सिंह जी का पहला सवाल ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर कितने बजे गया, क्यों गया, क्या करने गया। तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, उस घर में जो लोग इस वक्त बैठे हैं बड़ी बेचैनी है उनके अंदर, बड़ी छटपटाहट है और घबराहट है कि कपिल मिश्रा क्या डिटेल बताने वाले हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, कल 11:30 बजे CBI का टाइम मेरे को मिला है सारे डिटेल लेकर। जो डिटेल पब्लिक करे जाने चाहिए थे, जिनके कारण एविडेंस में कोई गड़बड़ नहीं होती, जांच में कोई प्रभावित नहीं होती, वो मैंने सारी देश की जनता को बताए हैं कि सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए।
कपिल मिश्र ने कल दावा किया कि दिल्ली के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने उन्हें बताया था कि केजरीवाल ने ये पैसे कथित रूप से अपने किसी रिश्तेदार के लिए लिए थे। आज संजय सिंह ने कपिल मिश्र को ललकारते हुए कहा कि वो बताएं कि केजरीवाल के किस रिश्तेदार के लिए उन्होंने पैसे लिए। इस पर कपिल मिश्र ने कहा,
आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था, जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और PWD डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया, अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके लिए किया।
उधर आज कपिल मिश्र के इन इल्जाम के बारे में आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी किसी तरह से भी चाहते हैं कि उन्हें बदनाम कर दिया जाए।
तो ये इस बात का प्रमाण है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी कितनी हाई है, और यही जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी एकमात्र कोशिश ये किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की साख पे बट्टा लगाया जाए, उनको भी साबित कर दिया जाए कि आप ईमानदार नहीं हो, आप हमारी तरह बेईमान हो। जो बात कपिल मिश्रा जी ने कही है वो वाकई में दुखद भी है, हम सब लोगों को अंदर तक आहत भी करती है, क्योंकि कल तक हमारे साथ थे और आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब उनको मंत्री पद से हटाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि दिल्ली के अंदर पानी को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें पिछले 1.5-2 महीनों में आई थी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, उसके बाद से उन्होंने इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया।
उधर विपक्षी दल BJP के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उनके इस्तीफे की मांग कर डाली।
अब इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई इस्तीफा से कम नहीं होना चाहिए, या तो इस्तीफा दे दें या फिर इनके खिलाफ CBI इंक्वायरी हो।
कपिल मिश्र अब तक जल मंत्री थे, लेकिन उनके काम की कथित रूप से आलोचना हो रही थी, जिसके कारण पार्टी के अनुसार उन्हें पद से हटा दिया गया। अब उन्हें पार्टी से निकालने की बातें की जा रही हैं, लेकिन कपिल मिश्र कहते हैं वो पार्टी से हिलने वाले नहीं। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
चारा घोटाला मामले में RJD नेता लालू यादव की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में CBI की अपील को मंजूर कर लिया है। CBI ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब ये है कि अब देवघर मामले में भी लालू यादव के खिलाफ अलग से मुकदमा चलेगा। पटना से मनीष शांडिल।
बीते करीब 1 महीने से भाजपा के निशाने पर बने हुए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुसीबत आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से और बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लालू प्रसाद पर पशुपालन घोटाले में आपराधिक साजिश रचने का मामला भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के नवंबर 2014 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसने लालू के खिलाफ चारा घोटाले में आपराधिक साजिश की जांच खत्म कर दी थी। हाई कोर्ट ने तब तर्क दिया था कि जिस शख्स को दोषी ठहरा दिया गया है या बरी कर दिया गया है, उसे फिर से उसी मामले में जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसके बाद CBI ने चारा घोटाले में लालू के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज इसी अपील पर फैसला आया है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने आज के फैसले को एक स्वाभाविक फैसला बताया है।
झारखंड हाईकोर्ट से इतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक अलग निर्णय आया। ये पूरी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिस प्रक्रिया में हम लगातार संलग्न हैं। कानून के निजाम पे हमारा पूरा भरोसा है। हमारा सिर्फ मानना है कि 9 महीने की ट्रायल की अवधि संभवतः हमारे पक्ष को संजीदगी और संवेदना से सुनेगी और हमें न्याय हासिल होगा।
वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी पशुपालन घोटाले की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख लोगों में से रहे हैं। आज के फैसले के बाद उन्होंने यकीन जताया है कि इन मामलों में भी लालू को सजा होगी। साथ ही उन्होंने आज के फैसले के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा और उन्हें अप्रत्यक्ष न्योता भी दिया।
आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को सुशासन से कोई मतलब नहीं है, गुड गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है, अपराध भ्रष्टाचार अब उनके लिए बीते दिनों की बात हो गई है। मुख्यमंत्री बने रहें और लालू जैसे कमजोर सहयोगी के साथ मुख्यमंत्री बने रहना उनके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। और से मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आएंगे। कल कोई स्थिति बनेगी तो बीजेपी विचार करेगी, समय आएगा तब हम विचार करेंगे क्या करना है।
वहीं प्रभात खबर के बिहार संपादक राजेंद्र तिवारी का कहना है कि आज के फैसले को लेकर विपक्ष हमलावर जरूर है, लेकिन इसका राजद या नीतीश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
देखिए, महागठबंधन में राजद तो पहले से शामिल है और लालू जी ये सभी में पहले से चल रहे थे। अंतर सिर्फ इतना है कि अब ये अलग अलग चलेगी। सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा या महागठबंधन पर कोई असर पड़ेगा ये मुझे दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात रही राजद की, फिर यही बात आती है कि राजद पार्टी के तौर पर को अपना वो माने हुए है, वो अध्यक्ष हैं उस पार्टी के और पहले से ही मुकदमे चल रहे हैं, तो पार्टी पे भी पार्टी की राजनीति या पार्टी की अथॉरिटी उस पर असर पड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
लालू यादव को सीबीआई की एक अदालत पशुपालन घोटाले के एक मामले में पहले ही दोषी ठहरा चुकी है। अक्टूबर 2013 में उन्हें 5 सालों की सजा मिली थी। इस मामले में फिलहाल वे जमानत पर हैं। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में लगभग सन्नाटा है। वहां पुलिस बल भारी तादाद में तैनात है। कहा जा रहा है कि गांव के दलित और राजपूत दोनों तरफ के युवक गिरफ्तारी के डर से वहां से नदारद हैं। ऐसे में औरतें हैं जो अपना अपना पक्ष रख रही हैं। शब्बीरपुर की दलित और राजपूत महिलाओं से बातचीत की वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ने।
दो घर, एक बड़े बेटे का और एक छोटे का, दोनों की बिना प्लास्टर की दीवार पर आगजनी के निशान 2 दिन बीत जाने पर भी ताजा हैं और वती का विलाप। कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई ओमवती की बहू किसी तरह जान बचाकर भागी। अब घर में बस वो हैं और बड़े बेटे के आंगन में खड़ी सहमी नजरों से सबको देखती अकेली खड़ी वो गाय। मग्गू ओमवती की पड़ोसन है।
कोठे पर कुछ अड़का आग लगाई उन्होंने, वाड़ तो इनका पड़े नहीं, कोठे पर कोई अड़का जी बड़ा लंडे का घर इसका ही हुआ है, इसमें आग लगाई। फिर छोटे आकाश बुढ़िया के 2 लड़के थे इसका।
राजपूत युवक शक्ति जो हमें राजपूत टोली की तरफ मिले थे कहते हैं,
आग तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही आग शुरू करी, स्कूटी फूंकी पुलिस वालों की, आग तो उन्होंने ही शुरू कर दी थी।
लेकिन आधी सिकी रोटी, एक पांव आग की नजर हो गई जींस, कमरे में बिखरा अनाज, नोकीले हथियारों से भेदी गई खिड़कियां और आंगन में अकेली बंधी वो गाय कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। पास के गांव सिमलाना जा रही म्यूजिक सिस्टम के साथ राजपूतों की वो टोली दलितों और राजपूतों के बीच विवाद, पत्थरबाजी और फिर कथित रूप से दूसरे गांव के सैकड़ों युवकों का शब्बीरपुर में जमा होना और हमला करना। गांव की गली के किनारे पड़ने वाले दलितों का शायद ही कोई घर हो जिसे आग के लपटों ने ना घेरा होगा। गेहूं की कटनी के बाद आंगन या घर के बाहर पड़े अनाज भी जगह जगह जले बिखरे दिखे। शुक्रवार की घटना में 35 साल के एक राजपूत युवक की मौत हो गई थी। मामला हत्या का भी बन रहा है। पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 8 दलित हैं। सरोज कहती हैं,
मेरा पति पाजा जी उसे भी सुबह उठा ले गए
आज।
हाँ जी,
कौन ले गया उठा के?
पुलिस वाले। 2 मेरा बच्चे थे, एक बच्चा मेरा गुजर गया था, एक है वो 12 रहा मेरा बच्चा, 4 मेरा लड़की जी, वे भी पता नहीं कहीं रिश्तेदारी में कहीं जंगल बाहर में, 2 मेरी लड़की जवान है बिल्कुल, और 2 मेरी छोटी छोटी जागती हो, क्या पता किक्कर बिगड़ती फिरा किक्कर नहीं।
राजपूत टोली की विमलेश हमें गांव के एक चौराहे पर मिलती है।
मेरा बच्चा नाबालिग है जी, 17-18 साल का बच्चा होगा, और खेत में से आया था जी, वो सोते हुए को ऊपर से ले गई पुलिस, उसे बेटे को भी ले गए, पति को भी ले गए, जेठ को भी ले गए।
सविता भी विमलेश के साथ हैं, उस कम से कम 100 राजपूत औरतों की टोली का हिस्सा जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया था।
मेरे पति को भी ले गए जी, जेठ को भी ले गए। घर में 2:30 बजे के करीब में अंदर कूद के नीरे सड़े, उन्होंने हमारी मच्छरदानियां उगाड़ उगाड़ का बिल्कुल वे उठाकर उन्हें ले गए। इसी तरह अभी भी नहीं कपड़ों के चलो।
आक्रामक रुख अख्तियार करती भीड़ को देख पुलिस की वहां तैनात टुकड़ी हमें वहां से जाने को कहती है। पास के टोले में लेकिन लगभग सन्नाटे का माहौल है या फिर रोने की आवाज है। मग्गो हमसे कहती हैं,
अन्य कभी नहीं ऐसा हुआ जी, हम इनके खेती में हम कर रहे थे, देखो जो कितना हम तो इनके खेती में गेहूँ काट रहे जी, हमारे घरों में आग लगा रहे, बता क्या जिंदगी हमारी।
ओमवती के बेटे भी दूसरे दलितों की तरह राजपूतों या दूसरी ऊंची जाति के लोगों के खेतों या घरों पर मजदूरी करते हैं।
जमीन होती तो 2-4 बीघे हुई किसी का, इतनी मेहनत मशक्कत नहीं हम करते, जब हमारे पास जमीन होती थी।
शायद यही वजह थी एक दूसरे पर निर्भरता, जिसकी वजह से गांव में इस तरह का कोई हिंसक विवाद पहले नहीं हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप जयंती समारोह, पास के दसियों गांव और दूसरे सूबों से उसमें शामिल होने वाले सैकड़ों लोग, वो ताना बाना खिसक गया है। शायद दलित बेहद नाराज हैं। हिंदू वोट बैंक को और बड़ा करने की कोशिश में लगी बीजेपी को देश राज सिंह जैसे दलितों के मन को समझने की जरूरत है, वरना
ना कोई हमें हिंदू मानना है। अगर हमें हिंदू मानते तो यह दशा नहीं कराते, अगर हम हिंदू होते ना तो यह हमारी दशा नहीं होती, ठीक है।
फैसल मोहम्मद अली, BBC, शब्बीरपुर गांव, सहारनपुर।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और इंदु पांडे।
आपकी राय, नमस्कार स्वीकार कीजिए। राजेश जोशी का, मेरे साथ हैं इंदु पांडे।
नमस्कार।
और दोस्तों, आपकी बहुत सारी चिट्ठियां और मैं देख रहा हूँ चिट्ठियां कम हैं, ईमेल ज्यादा हैं, तो ईमेल से शुरुआत की जाए।
जरूर राजेश जी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इन सबको देख के लग रहा है कि एक बारिश हुई है, बहुत
बारिश हुई है। अरे बाप रे,
और ये बारिश है रेहान फजल के लिए।
रेहान फजल के लिए बारिश हुई है, यानी मुझे तो लगता है श्रोताओं ने तारीफों की बरसात कर दी है। क्या लिखते हैं श्रोता?
तारीफ की है रफीक इब्राहिम परकार ने, करजी खेड़ा रत्नगिरी महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि शुक्रवार की हिटलर के अंतिम क्षणों पर रेहान फजल की विवेचना पसंद आई।
मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे श्रोताओं ने हिटलर पर जो रेहान फजल ने विवेचना की थी वो पसंद आई है उनको और तारीफ की है। तो चूंकि हमारे पास समय कम रहता है, सबके नाम पढ़ दें और एक एक लाइन में बता दें कि क्या कह रहे हैं।
जरूर। जीशान नैयर है ग्राम तरैया, जिला बेगूसराय, बिहार से। जसदेव सिंह ने भरतपुर, राजस्थान से ईमेल भेजा है, एडोल्फ हिटलर पर रेहान फजल की विवेचना बहुत अच्छी
पसंद आई।
इंदर सिंह धामी, प्राइमरी स्कूल बंदा, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से, ये भी इसी बारिश में शामिल हैं। साथ में है बालाराम बिश्नोई, ग्राम केलनसर, जोधपुर से। लिखते हैं कि भाई वाह।
अच्छा, क्या मतलब इनके मुंह से वाह निकल गए। जी।
जुगल किशोर, कड़वासरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। 5 मई की विवेचना में वही हिटलर के अंतिम दिनों से जुड़े लम्हों को आंखों के सामने तस्वीर का एहसास कराने के लिए रेहान फजल जी को तहे दिल से शुक्रिया।
और मैं देख रहा हूँ इसके अलावा और कोई ईमेल भी है क्या?
बहुत सारे हैं वैसे।
तो फिर आप सांस मत लीजिए, आप रुक जाती हैं तो मुझे लगता है कि अब बस ये तारीफ खत्म हो गई।
नहीं नहीं, तारीफ बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। एक बहुत ही प्यारी सी चिट्ठी है हमारे पास, देखिए।
जी हाँ, ये तो डाक से आई है।
ये लिखा है भुवनेश्वर दास, रोसड़ा, जिला समस्तीपुर, बिहार से। ये भी कहते हैं कि विवेचना मानो गहरे समुद्र में मोती को ढूंढना है।
बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, रेहान साहब दरअसल गहरे समुद्र में गोता लगाकर मोती बीन करके ही लाते हैं।
और इस संदर्भ में ये रेहान जी से एक आग्रह करना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में मुस्लिम रचनाकारों की भूमिका पर अगर ये विवेचना प्रस्तुत करें तो बहुत खुशी होगी।
ये मिला जुला इतिहास और गंगा जमनी तहजीब तो हिंदुस्तान की परंपरा में है। रेहान साहब तक आपकी ये मांग पहुंचा दी जाएगी और हो सकता है आने वाले दिनों में आप इस कार्यक्रम को सुने, लेकिन मैं अभी भरोसा नहीं दिला सकता हूं जब तक रेहान साहब से बात नहीं हो जाए।
जी, अगला हमारे पास ईमेल है गणेश प्रसाद हुजादार। लिखते हैं कि जब मैं प्रशंसा भरा खत लिखता हूं तो शामिल नहीं करते, मानता हूं कि वक्त की कमी के कारण सबके खत शामिल करना मुमकिन नहीं है, पर कम से कम चिट्ठी लिखने वाले सभी का नाम तो आप पढ़ सकते हैं।
देखिए हुजादार साहब, आपकी चिट्ठियां अक्सर शामिल होती हैं और आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आपकी चिट्ठी शामिल नहीं होगी। लेकिन हर हफ्ते शामिल करना शायद मुमकिन नहीं होता है। ये दूसरे श्रोताओं से भी कहना है जो लगातार चिट्ठी लिखते हैं, उनका स्वागत है। और अगर वो जिस दिन चिट्ठी नहीं उनकी मिलती है तो हमें थोड़ा खालीपन महसूस होता है, लिखते रहिए, लेकिन कई बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो अलग बात।
बहुत ही अलग रंग का हमारे पास पोस्ट कार्ड है,
अमूमन आसमानी से रंग का है।
जी अमूमन पीले रंग के होते हैं, आसमानी रंग का हमें भेजा है अमर शाह नौतन टोला सोता चंपारण बिहार से। इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी भेजा है। लिखते हैं कि सलमान रावी की जो रिपोर्ट थी बहुत अच्छी लगी छत्तीसगढ़ में, और इसके साथ ही इनका कहना है कि माओवादियों के विरोध में कठोर शब्द उठाने की और आम जनता तक शासन की सारी सुविधा मुहैया कराने की, बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन की,
इन्होंने अपने लंबे सुझाव दे रखे,
इन्होंने सुझाव दिए हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुझावों का, और हम इसी तरह से आपकी चिट्ठियां शामिल करते रहेंगे।
जी
मैं ये जो पोस्ट कार्ड आपके हाथ में देख रहा हूँ ये बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, किन्होंने लिखा है?
ये लिखने वाले हैं श्री हेमा राम सुथार, ग्राम पोस्ट कुम्हारों की बेरी, कोजा जिला बाड़ में, राजस्थान से। लिखते हैं कि 2002 से नियमित श्रोता हूँ बीबीसी का, और रेहान फजल सहित समस्त बीबीसी टीम को प्यार भरा नमस्कार।
अरे आपको भी नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार। दूसरी चिट्ठी देखिए,
इनका नाम है जगमोहन धीराय, हिसार हरियाणा से इन्होंने लिखा है, और ये भी कहते हैं कि सभी को जो लोग यहाँ पे प्रस्तुत करता है उनको सादर नमस्ते। और रेहान फजल के साथ साथ राजेश जोशी, निखिल रंजन, संदीप सोनी, सब लोग बीबीसी हिंदी की जान है, इनका ये कहना।
बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चिट्ठी मेरे पास है पोस्ट कार्ड जो मदन लाल जमुना दास मिश्र ने लिखी है, ये धुले महाराष्ट्र से शिव शक्ति कॉलोनी से लिखी है। इनकी मांग है या ये फरमाइश कर रहे हैं कि वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम किया जाए। आपकी मांग हमने नोट कर ली है मिश्र जी, और ये रेहान फजल तक हम पहुंचा देंगे, संभव हुआ तो कुछ कार्यक्रम किया जाएगा।
तो आज आपकी राय रेहान फजल के नाम रही?
हाँ, पूरी तरह से रेहान फजल के नाम रही। और मैं श्रोताओं से फिर से गुजारिश करूंगा, अगर अपनी राय हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो हमें चिट्ठी लिखिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी और परखे हुए चेहरों को जगह दी है, जिसमें फिट हो चुके रोहित शर्मा ने वापसी की है, जबकि मनीष पांडे को भी जगह मिली है। राखी शर्मा की रिपोर्ट।
नई दिल्ली में आज बीसीसीआई की चयन समिति ने 1 जून से इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने 15 सदस्यों की टीम में अनुभवी और परखे हुए चेहरों को जगह दी है। इस टीम में फिट हो चुके बल्लेबाज रोहित शर्मा, स्पिनर आर अश्विन और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। आईपीएल में खेल रहे रोहित चोट के चलते पिछले साल नवंबर से टीम से बाहर थे, वहीं अश्विन चोट की ही वजह से आईपीएल में नहीं खेले और अब फिट होकर टीम में वापसी कर रहे हैं। शमी भी 2 साल बाद किसी वनडे में उतरेंगे। वापसी कर रहे इन खिलाड़ियों पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी नैन मोंगिया कहते हैं
कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा था, उनको इंजरी थी, इंजरी के बाद आईपीएल खेले अच्छे लय में नजर आ रहे। शमी का थोड़ा डाउटफुल है, काफी समय से मैच नहीं खेले थे, 2 मैच खेले सिलेक्शन के पहले और आईपीएल खेले है, तो वो एक थोड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। बाकी आर अश्विन को आराम दिया गया था क्योंकि वो थोड़े इंजर्ड हो चुके थे, काफी गेंदबाजी की थी टेस्ट मैचेस में, करीबन 700 ओवर किए थे, तो उनको आराम की जरूरत थी।
चयन की गई भारतीय टीम के मध्यक्रम का दारोमदार कप्तान विराट कोहली और लाजवाब फिनिशर कहे जाने वाले MS धोनी के अलावा युवराज सिंह के कंधों पर होगा। केदार जाधव, मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या में से किसी एक को ही प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी। इंग्लैंड की प्लेइंग कंडीशंस को देखते हुए टीम में 4 तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को लिया गया है। टीम में 2 स्पिनर्स आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने अभियान की शुरुआत 4 जून से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले इमैनुअल मैक्रों नई सरकार के गठन पर काम कर रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वो फ्रांस के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों की जीत से काफ़ी खुश हैं। मर्केल के मुताबिक जर्मनी फ्रांस की मदद करना चाहता है। सीरिया के सैकड़ों विद्रोही लड़ाके और उनके परिजन दमिश्क के पास के घेरेबंदी वाले इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। अफगानिस्तान से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान की सरकारी सेना और तालिबान के बीच कुंदूज में जोरदार संघर्ष जारी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलकराज भाटिया ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।